आगे चलिए आयत नंबर 105। मा यवद्दुल्लज़ीना कफरू, नहीं चाहते वो लोग जो काफिर हैं। वुद कहते हैं मोहब्बत की कसरत को, शदीद मोहब्बत। पीछे भी लफ्ज़ गुजरा था, मैंने वहाँ इशारा किया था। वदूद या वदूद, अल्लाह सुबहान तला का जो नाम है वो भी इसी से ही है। यानी ये सारा कुछ क्यों होता है और इस मामले में ये सारी चीज़ें किस लिए आती हैं? तो फरमाया इसकी वजह, नहीं चाहते वो लोग अल्लाह जीना कफर हो। अब यहाँ बड़े गौर से नजरें जमाइएगा तो आपको एक हकीकत समझ आएगी। मैं सवाल पहले ही उठा देती हूँ ताकि आपकी तवज्जो ज्यादा हो, क्या अहले किताब में काफिर होते हैं? यदि ये एक बहुत बड़ी डिबेट है आज मगरिब ज़दा जहनों के अंदर कि अहले किताब काफिर नहीं हो सकता, वो काफिर सिर्फ बुत पूजने वाला होता है, तो ज़रा आयत पे गौर कीजिएगा। माँ यवदुल्लज़ीना कफरू, नहीं चाहते या नहीं पसंद करते, दे डोंट लाइक, कौन? अल्लज़ीना कफरू, वो लोग जिन्होंने कुफर किया। किन में से हैं वो लोग? मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से। और आपको रेफरेंस लिखा दूं तो सूरत बैजीना में तो तकरार है इस बात की, ठीक है? तो अहले किताब में से भी काफिर हो सकते हैं। और कौन से काफिर? वलल मुशरिकीन, और मुशरिक भी नहीं ये चाहते। क्या नहीं चाहते? यहाँ आगे आप छोटा सा क्वेश्चन मार्क डाल के पूछिए, क्या नहीं चाहते? इज इक्वल टू डालिए, जवाब आगे आ रहा है, अय युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैरिन, ये के नाजिल की जाए तुम पर कोई भलाई, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। अहले किताब और मुशरिकों के काफिर लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते कि तुम पर कोई खैर तुम्हारे रब की तरफ से उतारी जाए। खैर से यहां क्या मुराद है आपको पता है? कुरान, वही इलाही। नबी सल्लम पर जो वही उतरती थी वो उनको अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए तो ये डी ट्रैक करने वाली या डिस्ट्रैक्ट करने वाली कोशिशें करते थे कि इल्म की महफिलों का असर कम हो जाए। तो क्या अल्लाह ताला इनकी इस ख्वाहिश का एहतराम करते हुए अब हक का या कुरान का दरवाज़ा बंद कर देगा? नहीं, क्योंकि वल्लाहु, और अल्लाह ताला, यख्तसु, खास करता है, खा स्वाद स्वाद, इसमें ता जो है ना ये शिद्दत की है, एहतसास, इसलिए लफ्ज़ बोल रही हूँ कि ये रूट में नहीं है। आप इसका रूट क्या लिखेंगे? हा खा स्वाद स्वाद, खस्सा, उसी से एहतसास अलग कर लेना, किसी चीज़ को चुन लेना, बिल्कुल पीछे कर देना, ठीक है? अल्लाह खास करता है, बिरहमति ही मैयशा, ये बा का भी तल्लुक है यख्तसा के साथ, अपनी रहमत के साथ, मैयशा, जिसको चाहता है। या रहमत से क्या मुराद है? नबूवत। ये लफ्ज़ लिखेंगे तो बात समझ आएगी। आम लोगों के लिए वो चाहते हैं खैर ना मिले, कुरान, वही, तभी तो अल्लाह के नबी की इल्म की महफिलों में जाके ऐसे रंग में भंग डालते थे। और नबी सल्लम की जात के लिए ये क्या चाहते हैं? बिरहमतिन, रहमत ना मिले, वो ही सगे सोतेले का चक्कर, बनी इसराइल और बनी इस्माइल का चक्कर। अल्लाह कहते हैं मैंने नबूवत इनसे कोई पूछ के देनी है, मैं अपनी रहमत जिस पे चाहता हूँ कर देता हूँ, और वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्ल अज़ीम, अल्लाह ताला साहिब फजल है बड़ा, अल्लाह है जू, जू कहते हैं वाले को, जू नसीब, जू हज का लफ्ज आगे हम पढ़ेंगे सूरह कसस में। अल फदल, किसी को उसके हक से ज्यादा देना, फजूल लफ्ज भी इसी से, बेकार चीजें होती हैं। अल अजीम लफ्ज है ना, फाइल का वजन है, इस रुकू में आपको फाइल के वजन पे बहुत मिलेगा। वही बातें याद कर लें जो सूरह फातिहा से बताती आ रही हूं, रहीम, रजीम, करीम, कॉन्टिन्यूटी और दवाम और तसलसल। अजीम में दो तरह की बड़ाइयाँ होती हैं, कैमियत और कैफियत। नहीं समझ आया? क्वालिटी में भी बड़ा होना, आला क्वालिटी का, ब्रांडेड, और क्वांटिटी में भी बड़ा होना। क्या बात समझ आई? अल्लाह बहुत बड़े फजल वाला भी है और अल्लाह ताला बहुत आला फजल का भी है। सोच बताई जा रही है, ऐब क्या था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी की वजह क्या थी उनकी? ये मसला, अल्लाह के नबी अपनी जात से बड़े अच्छे थे। आज भी आप देखिए, जब ये लोग मसलकों और फिरकों बाजियों में जाते हैं ना तो नफरतें पैदा होती हैं, लेकिन आप किसी दूसरे फिरके के किसी आलिम को मिले, किसी बहुत दीन का काम करने वाले को मिले, पर्सनली आप क्लोज सर्किट में मिले, दे आर वेरी नाइस पीपल, वेरी फ्रेंडली, वेरी स्माइली, आप कहते हैं ये बहुत अच्छा बंदा है। लेकिन दूर से फिरके और मसलक ग्रोह के नाम पर नफरतें पैदा की होती हैं, वजह क्या है? क्योंकि लोग असल में लोगों को उनके नामों से देखते हैं, टाइटल से देखते हैं। अहले किताब का सबसे बड़ा मसला क्या था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जात में तो बुरे नहीं हैं। लोग कहते थे तो बड़े अच्छे हैं, हमने तो सोचा था ये वहाबी हैं पर ये तो बड़े अच्छे हैं, हमने तो सोचा था ये कोई बहुत एक्सट्रीमिस्ट है लेकिन ये तो बड़े अच्छे लोग हैं। लेकिन वो दिल में जो बुग़्ज़ पल रहा था कि नबूवत बनी इसराइल की बजाय बनी इस्माइल में क्यों आ गई, उसी की तरफ इशारा है। अपने आप को बड़ा समझने वाले दूसरों की बड़ाई को ज़रा कम ही समझ रहे होते हैं, तो वो अल्लाह के नबी के साथ ये नफ़रत का मामला करते थे। क्या पता चला कि लोग ना भी चाहें, अल्लाह ने जिसको जो देना है वो देता है, अल्लाह सुबहान तला की ज़ात है वो देता है। अब थोड़ा सा अगर इस आयत पर आप गौर करें ना, तो आप देखिए कि काफिरों की बातें जो आई थी मुसलमानों पे, मा यवदुल्लज़ीना कफरु मिन अहलिल किताबी वलल मुशरिकीन अय्युनज़्ज़ल अलैकुम, अलैकुम के ऊपर ज़रा नज़र डालें। कुम जमा है कि वाहिद है? जमा है ना, का की कुमा कुम, कुम जमा आ रहा है, ठीक है। तो कुम से यहाँ कौन मुराद है? सारे मुसलमान। सिर्फ नबी सल्लम पे नहीं, उम्मत मुस्लिमा पे भी वो यही चाहते थे। तो यहाँ एक बात नोट कीजिएगा, आज हम मुसलमान जब कुरान को छोड़ते हैं तो अहले किताब की इस ख्वाहिश को नहीं पूरा कर रहे कि अल्लाह इन पे अपनी रहमत ना करे। हज़रत उमर के बारे में आता है कि वो मदीना में एक सैनिगॉग, क्या कहते हैं उसको उर्दू में, यहूद का इबादत खाना, वहां गए, जाके कहने लगे ये जिब्राइल के बारे में तुम क्या समझते हो, तुम्हारा क्या ख्याल है जिब्राइल कैसे हैं? कहने लगे हम उनको बिल्कुल नहीं पसंद करते। कहा भी क्यों नहीं करते? कहा इसलिए कि वो हमारी वो बातें जो हम तुमसे छुपाते हैं उसको आकर मोहम्मद को बता जाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी जुरत की बात है, आप नोट कीजिएगा कि हमें जिब्राइल बिल्कुल नहीं अच्छे लगते क्योंकि ये हमारी किताबों की छुपी हुई बातें आके तुम्हारे नबी को बताते हैं। अच्छा, कहते बट वी लाइक मिकाइल, माइकल कहते हैं ना आज इंग्लिश में मिकाइल को, माइकल, माइकल इज वेरी गुड। आज भी अगर आप बाइबल खोल के देखें ना, तौरात के नाते से अगर आपको ये बात कहूँ तो उन्होंने वहां साबित किया हुआ है कि गॉड यानी अल्लाह की दाई तरफ मिकाइल रहते हैं, बहुत अच्छा फरिश्ता है, बारिश उतारता है और खूबसूरत अहकाम और ये वो, और लेफ्ट साइड पे जिब्राइल है। वो कहते हैं मुसलमानों तुम्हें वो अल्लाह का बाएं हाथ वाला फरिश्ता मिला। पीछे भी पढ़ चुके हैं ना कि जिब्राइल को ये प्यार नहीं करते, मोहब्बत नहीं, क्यों? क्योंकि ये हमारे ऊपर अजाब लाते हैं, ये तो रात के बड़े हुक्म गलत लाए, और अब तो जुल्म हो गया कि कुरान या वही जो थी इनको बनी इसराइल में लानी थी ये बनी इस्माइल के एक नबी पर ले आए, तो यही बातें करके बता दी कि युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैर मिन रब्बिकुम। यहाँ कुरान को खैर कहा गया। मैं आपसे पूछती हूँ, आप मुझसे पूछें, और सूरत नहल में भी अल्लाह भी आपसे पूछेगा कि जो लोग इल्म की महफिलों से निकलते हैं लोग उनसे पूछते हैं क्या नाजिल किया तुम्हारे रब ने, तो जो अल्लाह वाले होते हैं वो कहते हैं बस एक लफ्ज़ है, खैर। आप और मैं अपने दिल से पूछें, हम इस कुरान को खैर समझते हैं? क्या आपको मुझे ये अपना कुरान खैर लगता है? कोई आप में से नाम भी बताए ना तो मैं आपको दोनों हाथ खड़े करके बता सकती हूँ कि इससे बड़ी तो कोई खैर ही नहीं है। सूरत यूनुस आयत 48-47 में क्या हुआ, खैरुम मिम्मा यजमाउन। ये कुरान तो शिफा है, रहमा है, हुदन है, बुशरा है, तो ये बहुत बड़ी खैर है। मैं अक्सर उन लोगों के लिए अपने दिल में रहम महसूस करती हूँ, इस वक्त भी मैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए रहम महसूस कर रही हूँ जो सिर्फ अपनी डीफोकस्ड होने, ऑर्गेनाइज ना होने की वजह से आज की क्लास छोड़ के या तो किसी के साथ शॉपिंग कर रहे होंगे या किसी के लिए खाना पका रहे होंगे या सो रहे होंगे, बाकी मजबूरियां तो अलग हैं। ये खैर है जिसने आपको मुझे यहां लाके जमा किया। वीकेंड ऐसे लगता है मौत की तरह खत्म ही नहीं हो रहा। ये कुरान की तरफ आपका आना आपको नहीं पता आपको कितनी बीमारियों से बचा रहा है और कितनी बेकार किस्म के मशगलों से बचा रहा है। इस वक्त आप अपनी दोस्तों की फरमाइशें पूरी कर रहे होते अगर उनके गुमान के मुताबिक आप इस वक्त क्लास ना ले रहे होते। तो ये कुरान एक बहुत बड़ी खैर है, सबसे बड़ी खैर है जिसने आपको मुझे बहुत सारी मुश्किल चीजों से बचाया हुआ है। दुआ करें कि हम इस खैर को पाने वाले बन जाएं। लेकिन याद रखिए हर एक को खैर नहीं अल्लाह देता, खैर उसको ही मिलती है जिसमें खैर होती है। ये भी जुमला लिख लें जम है इस लेसन का, जिनके दिलों में खैर होती है ना अल्लाह उनको खैर देता है। सूरत अनफाल की आयत में आता है कि अल्लाह अगर इनमें को खैर देखता ना तो लास माहूम इनको सुनवा देता। جیسے عمر کے اندر خیر تھی اللہ نے ان کو اسلام دے دیا، دعا تو اللہ کے نبی نے ابو جہل کے لیے بھی مانگی تھی، لیکن اس کے اندر خیر نہیں تھی تو اس کے اوپر قرآن نہیں پڑھا. بالکل ایسے جیسے اچھا مالی ہوتا ہے نا، بیج وہیں ڈالتا ہے جہاں سے اگنے کا اندازہ ہوتا ہے یا زمین اچھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ خیر والے دلوں کو چنتا ہے. اور آپ سب کو مبارک ہو، آپ کا اندر کا خیر اب ابھرنا ہے. جیسے بیج ڈلتا ہے تو پھر مٹی سے نکلتا ہے نا، یہ قرآن کا بیج آپ کے اندر ڈل رہا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں اس نے آپ کے لیے کیا کیا خیر کے دروازے کھولنے ہیں. کہہ لیجئے کہ یہ ڈور ٹو سکسیس ہے آپ کا میرا، اور سچ بات ہے اس سے بڑی کوئی اور بات نہیں ہے. تو لہٰذا یہاں آپ کے میرے لیے غیر مسلموں کے تناظر میں بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم اس کتاب سے اور جڑ جائیں، تاکہ دشمنوں کے دل میں اگر کوئی بات ہے تو وہ اس کو ہٹا دیں. سورہ زخرف آیت 32:32 میں بھی آتا ہے، اہم یقسمون رحمت ربی کا، کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت کو اب تقسیم کریں گے؟ کیا پتہ چلا کہ بہت سارے لوگ آج آپ کے خاندان میں بھی ہوں گے جو نہیں چاہتے کہ آپ یہ کام کریں، آپ کی دوستیں نہیں چاہیں گی، پھر تم بہت سخت ہو جاؤ گی، پھر تم ہمارے اوپر تنقید کرو گی، پھر تم ہماری دعوتیں نہیں پکاؤ گی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے جس کو کھلانا پلانا ہے، جس کو میں نے فائدہ دینا ہے ان کو دینا ہے، اور بغض اور حسد ہوتا ہے. اچھا یہاں ایک چھوٹی سی بات نوٹ کریں کہ یہاں ہم تو بار بار پڑھیں نا مدینہ کے یہود اور بنی اسرائیل اور کافر اور دوسرے تیسرے، کیا آج ہمارے بارے میں ہمارے دشمن یہ چاہتے ہیں؟ یعنی جو ایسا سوچتے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں؟ نہیں، دوست ہیں، اپنے ہیں، پیارے ہوتے ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، وہ ہماری کبھی صحت کو بنیاد بنا لیں گے. دیکھو نا سارا ویک تم کام کرتی ہو، ویکینڈ پہ بھی جاؤ گی، اور ویکینڈ بھی تم جا کے گزارے، ویک ڈیز میں بھی شروع کر دی ہے، چار چھٹیاں آئی تھیں تم اس میں بھی چلی گئی پڑھنے، تو وہی ملامت کرتے ہیں. تو یہ چیز آپ کے میرے لیے ہے کہ ہم نے اس میں اپنے آپ کو کہاں لینا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے آسان کرے. یہ جو لفظ ہے نا مئی یہ شاہ، تو یہاں من واحد ہے، یہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ پیچھے رحمت کی بات آئی ہے. یاد ذرا پیار سے دعا کیجئے کہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے اللہ، اے زندہ، اے تھامنے والے، ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، کیونکہ اللہ خود جو کہہ رہا ہے میں جس پہ اپنی رحمت کروں تو مانگ لیجئے. علم کی محفل میں تو رحمتیں ویسے ہی بڑی ملتی ہیں، اور رحمت مانگنے والی چیز ہے. جو حج پہ گیا مجھے مل کے اگر گیا یا میسج کیا تو میں نے اس کو یہی کہا کہ آپ وہاں سے اپنے لیے یہ رحمت مانگ کے آئیے گا کہ اللہ ایک دفعہ تیرے گھر آئی ہوں، اب مجھے اپنی کتاب سے پکا جوڑ دے. کعبہ تو وہاں چھوڑ دیا، قرآن تو ساتھ ہے میرے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ حج بھی آپ کا ببرکت بن جائے گا. اور شعور دلایا یہاں مسلمانوں کو اللہ نے کہ یہ بہت بڑا احسان ہے، نبی دیا، کتاب دی، تمہیں حکمت سکھا رہا ہے، کتاب کے ذریعے پاک کر رہا ہے، تزکیہ کر رہا ہے، تو تم اس کی قدردانی کرو، اور اللہ کا یہ فضل ہے. چلیے یہاں پہ بات پوری ہوئی. اگلی آیت میں کہہ سکتی ہوں کہ مشکل ترین آیتوں میں سے ہے. ٹاپک اتنا اہم ہے کہ میں اس کو صرف سم اپ کروں گی آپ کے سامنے، اور جس کو اس پہ مزید شوق ہے سیکھنے کا تو میں آپ کو انشاءاللہ بہت سارے اس کے اوپر ایڈوانس قسم کے لنکس بھی دے سکتی ہوں، بکس بھی ریفر کر سکتی ہوں، لیکن آپ کے لیول تک آسانی سے بات کروں گی. یہاں سے دوسرا شوشہ شروع ہوتا ہے، سیکنڈ پروپیگنڈا آف جیوس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ الزام لگاتے تھے. نمبر ایک، اب ذرا اپنے لفظوں میں پہلے میرے سے لے لیں، کچی پکی آیت کر لیں، پھر انشاءاللہ اس کو گوندھیں گے. کیسے؟ کیا کہتے تھے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ نہیں آتی، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں. اچھا جی، دوسرے الزام کیا لگاتے تھے؟ کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے جس کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام پہ آئی تھی، تو پھر ضرورت ہی کیا؟ جب موسیٰ پہ تورات جو اتر گئی تو اب قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی ایک ان کی بات تھی. تیسری بات یہ تھی کہ یہود کا اعتقاد تھا کہ تورات کے احکامات قیامت تک منسوخ نہیں ہوں گے، اسی لیے آپ کو ہوتا ہے وہ انجیل کو نہیں مانتے. یہ بات آپ پہ کلیئر ہے کہ جیوز نہ صرف یہ کہ قرآن کو نہیں مانتے، انجیل کو بھی نہیں مانتے. وہ ان کے حساب سے ایک بگڑی بھی کتاب ہے کہ جس نے تورات کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیا. پھر ایک اور جملہ لکھ لیں، یہود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے نا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے. عیسیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ نعوذ باللہ یہ دین سے نکلے ہوئے شخص ہیں. الزام لگاتے تھے ان پہ، کہتے تھے انہوں نے ہمارے دین کو آسان کر دیا. اسی طرح سے وہ کہتے تھے کہ انجیل بھی ٹھیک نہیں ہے، قرآن تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، تو لہٰذا وہ کہتے تھے کہ جب تورات ہے تو قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ تو جب ہم جو دین کا کام مدینہ میں کر رہے ہیں، تب ایک نئے نام کی کیا ضرورت ہے اسلام کے نام پر؟ اس کا اوپر یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں. آیت پڑھتی ہوں پھر انشاءاللہ ساتھ ساتھ دیکھیں گے. تھوڑی سی توجہ بہت چاہیے آپ کی اس کے اوپر. من انسخ، جو بھی، اس کا معنی آپ جو بھی کر سکتے ہیں، نہیں بھی آئے گا، یہ بولنے کے انداز سے دونوں میں جیسے بھی چاہیں کر سکتے ہیں، معنی انشاءاللہ سیم ہونا چاہیے. ننسخ، ہم منسوخ کرتے ہیں. نسخہ، اردو میں آپ نے ایک لفظ سنا ہے، ڈاکٹر نے نسخہ لکھ دیا، یہ وہی لفظ ہے. نسخہ کے لفظوں میں دو معنی لکھ لیجئے. نمبر ایک، منسوخ کرنا، جو اردو میں ہم بولتے ہیں پوسٹ پون کرنا، مؤخر کرنا، ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لکھنا. کیا سمجھ آیا؟ تبدیل کرنا یا کاپی کرنا، ریپلیس کرنا یا ابریگیٹ کرنا، یہ دونوں لفظ لکھ لیجئے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب بھی ہم منسوخ کرتے ہیں کسی آیت کو، اور ننسیہا، یا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں. ننسیہا وہی لفظ ہے جو آپ پیچھے شروع سے پڑھتے آ رہے، نسیہ، نسیان، انسان، بھلانا، ٹو فارگیٹ کے معنوں میں بھلا دینا. جب بھی ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، ناتی، ہم لے آتے ہیں، نون ہم کے لیے، آتی، آنا، اور آگے با لگی ہوئی ہے، خیر سے پہلے تو لانے میں بدل گیا. یہ جملہ کتنی دفعہ میں نے بولا ہے ابھی تک کی تفسیروں میں، آتی، آنا، با لگ جائے تو لانا، وہی بس ہے. ہم لے آتے ہیں کیا؟ خیر منہا. پیچھے کیا لفظ آیا؟ خیر، قرآن کے لیے، وہی کے لیے، یہاں بھی وہی لفظ آ گیا. ہم لے آتے ہیں بہتر، منہا، اس سے. چلو بہتر نہ لائے نا، تو مثلہا، اسی جیسا تو کم از کم لے آتا ہے، یعنی اس سے بدتر کبھی نہیں لائے. وی ول امپروو دیٹ، اور وی ول برنگ دا سیم تھنگ، یہ مراد ہے. ہم ساتھ وہی لے آتے ہیں. اور رہ گئی بات کہ اللہ کے بارے میں، تو علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے؟ یہ جو لفظ ہے نا، تعلم، تعلمو تھا، لم کی وجہ سے میم پہ جزم لگی، حرف مجزوم. جیسے آپ کو شروع سے بتاتی ہوں نا، فی، مین، حرف جر ہے، جس کے بعد لفظ اگلا جو آئے گا اس پہ زیر ہوگی، یہ تو سب کو پتا ہے نا. بسم اللہ، با کی وجہ سے اسمی آ گیا، بسم اللہ نہیں کہیں گے، کہیں گے تو ہنسے گا کوئی. آپ میری اس بات پہ جا کے گھر میں ایکٹیویٹی کریے، کھیلیے گا. قرآن میں لفظ لم جہاں بھی آئے گا نا، موسٹلی جیسے یہاں آیا ہے، تو لم کے بعد اگلے فعل کے اوپر جزم ہوتی ہے. تا لم ہے، اصل میں لفظ تا لمو تھا، بس نہیں سمجھ آئی تو چھوڑ دیجئے. کیا نہیں تم جانتے؟ ان اللہ، بے شک اللہ. یہ انا بھی کیسے انا ہو گیا؟ جب شروع میں قرآن پڑھنا شروع کیا تو ان اللہ زینا، انا کا معنی بے شک. جملے کے شروع میں آئے تو انا ہوتا ہے، انا کے ساتھ بہت ساری آئے تھے، ان اللہ علیہ کل شیء قدیر، لیکن بٹوین دا سینٹینس جیسے کہ یہاں آیا ہے تو انا ہو جاتا ہے. ہوتا یہ انا ہی ہے لیکن انا میں بدل جاتا ہے. اب آپ یہ پڑھ لیں علم تعلم ان اللہ علیہ کل شیء قدیر تو غلط ہوگا، ٹھیک ہے. بات چل رہی تھی پیچھے سے، بے شک اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. علم تعلم دوبارہ آ گیا، کیا نہیں تم نے جانا؟ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون، اس کے سوا، دون کہتے ہیں سوا، ایگزمپٹڈ، اس کے سوا کس کے؟ اللہ ہی اللہ کے. میں آپ سے ایک جملہ پوچھو، ابھی بولا ودن میرا حال ہے ون منٹ، یا لفظ اللہ کے نیچے زیر کیوں آئی ہے؟ شاباش، من کی وجہ سے، من دون اللہ، من ولی جن، نہ کوئی دوست، ولا نصیر، نہ مدد. تو ولی جن کی زیر اور نصیر ان کی زیر کیوں ہے؟ اب تو آنکھیں بند کر کے ہر چیز پہ زیر لگ جانی ہے، لیکن یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو من کی تکرار ہے نا، یہ من زائد ہے، معنی میں نہیں آتا، لیکن بس یہ جملے کا حسن بیان کرنے کے لیے ہے. اور یہاں ایک چھوٹی سی اور چیز پہ توجہ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی، یہ کر لیجئے کہ وما لکم میں، آپ دیکھیں شروع میں لفظ پڑا ماں، ہم نے اس کا ترجمہ کیا جو، لیکن یہاں میں نے ماں کا ترجمہ آپ کو کرا دیا نہیں، تو یہ انگلش کے لفظ وٹ کی طرح ہے. وٹ از دس، یہ کیا ہے؟ ہیں शुरू में वॉट आए तो क्या, और जुमले के बीच में आए तो नहीं। वही तरीकाकार अरबी और इंग्लिश का। बहरहाल यहाँ यहूद की एक और साजिश का जिक्र है, थोड़ा सा समझ लीजिए। आप यहाँ से देख रहे हैं आज के पूरे सबक में आपको ना इल्मी बातें जो है वो समझ आती हैं। यहूद जब नबी सल्लम की महफिलों में आते थे तो उनकी पूरी कोशिश इस पे होती थी कि कोई ना कोई सवाल उठाएं, फितना उठाएं। साहबा कराम सच्चे दिल से कुरान सुन रहे होते थे, ये नहीं कि वो बेचारे अनपढ़ थे या उनको आता नहीं, इंटेलेक्चुअल नहीं थे, जुमला लिखना चाहें तो लिख लें। साहबा कुरान सीखने के लिए आते थे तो उनके जहनों में कोई उल्टे सीधे सवाल नहीं आते थे कुरान सुनकर। यहूद सीखने वाले बन के कोई नहीं आते थे, परखने वाले बन के आते थे। उनको नबी सल्लम के बहुत सारे जुमलों पे इतराज होता था। कहते मोहम्मद एक दिन एक बात कहते हैं, दूसरे दिन दूसरी बात कह देते हैं, और तीसरी बात ये है कि जी ये कैसा कलाम है, और दिस एंड दैट, और एक वो जो मैंने आपको पहले लिखा दी कि तौरात तो बदलनी नहीं, कुरान के कुछ अहकाम हैं, चौथे पारे की पहली आयत में आप पढ़ेंगे। ऊंट का गोश्त यहूद नहीं खाते थे, नबी सल्लम की शरीयत में अलाउड हो गया। अब एक आलिम से कोई पूछे, आप मुसलमानों में दो फिरके लीजिए, इमाम साहब ऊंट का गोश्त खा सकते हैं? तौबा तौबा, नहीं खा सकते, हजरत याकूब ने मना किया था नहीं खाना। अच्छा, अब वो वहां से उठ के किसी मुसलमानों की मस्जिद में आ गया, नबी सल्लम ऊंट का गोश्त खा सकते हैं? हाँ बिल्कुल खा सकते हैं, बहुत अच्छा है। अब वो जो बंदा इधर से आया इधर कंफ्यूज, ये कहते हैं नहीं खा सकते हराम है, वो कहते हैं खा सकते हैं, तो वो वापस इनके पास आएगा जी ना, भाई बात सुने, आप कर तो सारे दीन का ही काम रहे हैं, तो एक कह रहा है हराम है, दूसरा कहता है बहुत पसंदीदा। अब ये बात वो पहले बात करने वाले तक पहुंची ना, तो ये पहली बात करने वाले फिर आपस में ये बातें करते थे जो यहां आ गई, ये मोहम्मद को समझ नहीं आती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हर बात हमारे खिलाफ करता है। देखिए थोड़ी सी मदीना की मैं आपको स्टेट समझाऊंगी, फिर ये आयत समझ आएगी, बहुत इसके डायमेंशन है, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह उलझाऊंगी नहीं, सिंपल सी बात करूंगी जो आपके मेरे लेवल की होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले मदीना के हालात को समझिएगा, गलत बात ना कह दो ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना आने से पहले किसी के बकौल मदीना की कैफियत वही थी जो अमेरिका में रहने वालों को लफ्ज लॉस वेगास की समझ आती है। आपको पता क्या लॉस वेगास? जुआ खाना, शराब कबाब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में 13 साल रहे, अल्लाह सुबहाना ताला ने एक बार भी शराब का जिक्र नहीं किया, पूरी मक्की सूरतों में आप जाके पढ़ लीजिए, तौहीद रिसालत, और वो अल्लाह को पता था, अल्लाह ने नहीं किया। मदीना में आए, मुसलमानों की शरीयत साजी शुरू हुई, तो शराबी थे लोग, जिना ऐसे था कि जैसे आप कह लें कि आज के दौर में बॉयफ्रेंड से लिविंग टुगेदर, ये सब आम था। शरीयत जो मिली ना मुसलमानों की शरीयत, ये मदीना के लोगों को असल में मिली है ना, अकायद तो मिल गए उधर। फिर मैं अगर जुमला बोलूं तो दीन के दो बड़े हिस्से कर ले, एक हिस्से को आप कहते हैं अकायद अकीदा, और दूसरे हिस्से को आप कहते हैं फिक्र, ठीक है, मामलात जो भी हैं। मक्का के लोगों को सिर्फ अकायद दिए गए, जो मर्जी, इवन आपको हैरत नहीं हो रही सोच के, 13 साल से मुसलमान हुए हैं अबू बकर सिद्दीक, एक भी नमाज कोई नहीं पढ़नी, कितना मजे का दीन है, नमाज ही कोई नहीं है, रोजे ही कोई नहीं थे मक्का में, जुमा ही नहीं पढ़ने जाना, ये तो बड़ा मजे का दीन है। क्यों? अकीदे को पुख्ता किया गया। अल्लाह सुबहाना ताला ने दीन इस्लाम को तदरीज के जरिए से मुसलमानों को दिया। जो बड़ी बड़ी खराबियां थी ना मदीना की बस्ती में या उस दौर के मुसलमानों या काफरों में, उसमें शराब था, जुआ था, सूद था, ठीक है, और मदीना में आप कह लें घर घर यही कुछ था, क्योंकि उससे पहले जो यहूद वहां दीन के नाम पे जमे हुए थे ना, उन्होंने ये सब कुछ अलाउ किया हुआ था, सूद का तो वो खुद काम करते थे, शराब पानी की तरह पी जाती थी। अब एक ऐसी सोसाइटी को बदलना एक रात में तो नहीं होगा, ये आप इसको ऐसे समझिए कि न्यू मुस्लिम जो आज रिवर्ट होकर इस्लाम पे आए, उसको आप या मैं तबलीग करें उसमें, और एक माशाल्लाह मुसलमान घर में पैदा होने वाले मुसलमान को तबलीग करने में जमीन आसमान का फर्क होगा। हम सब ने बचपन से शराब चखी नहीं है, मेरा गुमान है आप जितने लोग सुन रहे हैं, आपने और आपके घर वालों ने कभी शराब चखी भी नहीं है। आपको कोई कह दे यसलुनक अनिल खमर वल मैसर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर और नफुहुमा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कह देना कि शराब उन हराम उन, आप कहेंगे इससे भी ज्यादा लफ्ज बोलो, वी डोंट हैव दिस प्रॉब्लम। बट एक रिवर्ट मुसलमान होता है, अब वो आता है, शराब छोड़नी पड़ेगी, ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं कर सकता, उसके लिए मुश्किल होगा। अल्लाह ताला ने इंसान की इस तबीयत का ख्याल रखा। एक होती मशीन, मसा मेरा ये कंप्यूटर है ना, मसा इसमें विंडोज 10 है या विंडो फुला है, मैं कहती इसको 11 करना है, मेरे हस्बैंड इसको सारे को एक बटन दबाएंगे डिलीट कर देंगे, विंडो फुला फुला को खोलेंगे, वो नया इंस्टॉल कर देंगे, एक कोड बदलते हैं, आपके सेलफोन बंद हो जाते हैं, खुल जाते हैं, है ना। इंसान रोबोट नहीं है। बस आप कल तक एक गुनाह की जिंदगी गुजार रहे थे, आप नॉन मुस्लिम को तसव्वुर में लाएं, शराब उसके हाथ में, गर्लफ्रेंड उसके बाजू में, रातें उसकी नाइट क्लब में गुजरती हैं, इतने में उसको किसी जगह से अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम मिलता है, कहता है वाह गॉड तो है। देखिए अल्लाह को मानना और बात है, अल्लाह की मानना बहुत फर्क बात है। अल्लाह को बहुत जल्दी लोग मान जाते हैं, अल्लाह की माननी में देर लगता है। मैं ऐसी कई रिवर्ट सिस्टर्स को जानती हूँ, अल्लाह को तो डे वन में ही मान गई थी, अभी 4 साल में अभी तक अल्लाह की मानने में देर लग रही है उनको। यही हुआ। अब एक बंदा जो शराब पीता है और वो आपके मस्जिद में आ गया और कहता है कि शराब के बारे में क्या हुक्म है, तो अब आप उसको आखिरी हुक्म सुनाएंगे। 3 हिस्सों में शराब हराम हुई है जो आयतों के नाते से हमें मिलता है, आगे जब आयतें आएंगी तो ये आप वहां समझेंगे इंशाल्लाह ताला। आप कहते हैं नहीं, आज मुसलमान हुए हो, आज से ही हराम है, या मुसलमान हो जाओ या शराब छोड़ दो, कभी होगा मुसलमान? नहीं होगा। सूद में इंडल्ज है, डूबी पड़ी थी मदीना की सोसाइटी सूद में। हजरत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह ने सूद जैसे हुक्म को सबसे आखिर में क्यों पेश किया? आप पढ़ेंगे सूरह बकरा के आखिरी आयतें आ रही हैं, सेकंड लास्ट को जब होगा तो उसमें सूद की हुरमत है, और मदनी दौर के भी आखिर के दौर में वो नाजिल होती हैं। हजरत आयशा कहती हैं अगर ये शराब के और सूद के अहकाम दीन इस्लाम के शुरू में नाजिल हो जाते तो कोई भी ना इसको इख्तियार कर पाता। तो पहले दिलों में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की पकड़ को रखा, जब दिल जम गए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान किया, फिर उसके बाद आखिरत को देखा, जन्नत जहन्नम मरना दोजख कब्र सब कुछ, और आखिर में फिर लोग फिर खुद ही पूछते थे बताएं क्या करें, तो उनको बताते गए। इस तदरीज को यहां नासिख और मनसूख कहा गया। सिंपल बात आपको बता रही हूं, लफ्ज नासिख और मनसूख में क्या है कि अल्लाह ताला ने दीन को तदरीज से दिया। इसके 3 डिफरेंट एंगल है जो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। पहली बात यह कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि लोगों को सहूलत दी जाए, इंसानी तबीयत की रियायत की गई है। एकदम शराब नहीं छूटी तो शुरू में कह दिया फीहिमा इस्मुन कबीर, इसका नफा थोड़ा फायदा कम है। वो आयतों की तफसीर में ही सुनाऊंगी जहां वो आयत आएंगी, आने वाली हैं दूसरे पारे में इंशाल्लाह, तो आप इंजॉय करेंगे कि शराब से क्या नफे लेते थे फॉर अ गुड कॉज का नाम लेकर। लेकिन यहां आप समझें, आहिस्ता आहिस्ता छुड़ाई, चलो बुरी है, ज्यादा अच्छी नहीं है, कुछ दिन लोगों को अबू बकर सिद्दीक का नाम लिख लें। पहले ही हुक्म अभी शराब की हुरमत का आया ना, उन्होंने उसके बाद शराब को हाथ नहीं लगाया। कुछ सलीम तबा लोग होते हैं, वो इशारा मानते हैं, खत्म होगी बात। कुछ लोग पीते रहे, ठीक है नफा अच्छा है, कम है, लेकिन मना तो नहीं किया। फिर अगला हुक्म आ गया नशे की हालत में नमाज ना पढ़ना, कुछ ने नमाजों के वक्तों पे छोड़ दी, कुछ ने वैसे ही छोड़ दी। जब आखिरी हुक्म आया फिर उसके बाद नहीं किसी ने भी। ये है तदरीज, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आदि किया जाए, आहिस्ता आहिस्ता किया जाए। आज हम मुसलमानों को देखें, यहां से जरा सा आगे जाएं 4-7 घंटे आगे, वहां के मुसलमानों की नस्लें इस वक्त आप कह सकते हैं कि शायद यहां यूरोप में भी यही हालात हैं, बल्कि यहां तो ज्यादा अंधेरे हैं। कई बच्चे बिल्कुल वेस्टर्नाइज हो चुके हैं, उनके लिए शराब पैग खाने पीने कोई क्वेश्चन ही नहीं है। माँ बाप से दूर अलग, अपनी लड़कियां अपने दोस्तों के साथ रह रही हैं और लड़कों ने अपनी सहेलियां बनाई हुई और वो रह रहे हैं, अंदर कहीं इस्लाम का नाम है छुपा हुआ। अब एक ऐसा बच्चा किसी जुमे की नमाज में मस्जिद में अगर आ जाता है और मौलवी साहब से कोई बात करता है और वो आता है कह जी मैं तो फजर नहीं पढ़ सकता, मैं तो शराब पी के सोता हूँ, मैं कैसे नमाज पढ़ूँ? तो मौलवी साहब कह दें नमाजें 5 है भाई, फजर नहीं पढ़ते जहन्नमी काफिर मुर्दार फुला फुला, या तुम काफिर हो या फिर तुम जो भी है, तो वो जाएगा इस्लाम पे। उस इमाम को क्या चाहिए? ओके लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जोहर, जोहर की पढ़ो। अब आप अस्तगफिरुल्लाह दीन आसान कर दिया, जोहर से नमाज शुरू करो, और वो कहता मैं रात की भी नहीं पढ़ सकता, मैं नशे में होता हूँ। आप कहते हैं नशे में तो नमाज ही नहीं कबूल होती, बिल्कुल ना पढ़ो, क्या ये तबलीग होगी? नहीं, आप रिलैक्स्ड, ओके गो हैड, शाबाश, टेक अ स्टेप, ओके शाबाश। यानी आज भी हमारे अपने इर्द गिर्द हमारे अपनों में ऐसे लोग होंगे कि जिनको प्यार से बच्चे की तरफ पिचकार के दीन की तरफ लाने की जरूरत है। कुछ तो फिरकेबाजी की नज़र हो गए, कुछ दुनियादारियों की नज़र हो गए, कुछ को माशरा भी खा गया। अल्लाह ताला इन आयतों में असल में तबलीग की हिकमत सिखा रहे हैं। और नोट कीजिएगा, ये हैं वो कुरान की आयतें जिनको बुनियाद बनाकर होशियार किस्म के, होशियार लफ्ज में जान के बोल रही हूँ क्योंकि बुरे रंग में बोल रही हूँ, होशियार किस्म के दीनदार लोग कुरान को कैसे समझाते हैं, ये हुक्म मनसूख, ये ऐसे नहीं वो नहीं। मसलन किसी को जिहाद नहीं पसंद तो वो कहते हैं कुरान में 200 बार अल्लाह ने माफ करने का हुक्म दिया है, तो माफी की आयतों ने जिहाद को मनसूख कर दिया, लिहाजा अब कोई जिहाद नहीं रहा। किसी को तबलीग बड़ी पसंद है, वो कहता है कुरान में सबसे ज्यादा तबलीग का जिक्र है, अनजिर कुम वानजिर, लिहाजा अभी सिर्फ हम तबलीग करेंगे, अभी हम कोई और मैयर नहीं लेंगे। मन मानी तफसीरें तावीलें इस एक आयत पे हुई। आपको पता है कि तीन मुख्तलिफ अदवार आते हैं इस तारीख के ऊपर। एक सबसे पीछे अगर आप देखें जो बिल्कुल सामने, कह लीजिए कि जहां से इस्लाम शुरू हुआ था ना, तो एक फिरका गुजरा है जिसका नाम था मोतजिला। नाम सुना हुआ है? अजला से निकले हुए इस्लाम से, खारिजा इसका नाम सुना है, खवारिज। उस दौर पे जो मोतजिला फिरका था ना, वो क्या कहते थे कि इस्लामी शरीयत और कुरान में मनसूख हो सकती हैं आयतें, यानी आज एक हुक्म दिया कल बदल दिया जाए, लेकिन अमली तौर पे ये हुआ नहीं है क्योंकि जो आयतें मनसूख हो जाती हैं फिर उसके ऊपर ये है वो है गड़बड़, यानी आप कह लीजिए कि बहुत बातिल नजरियात है। कुछ लोगों ने शुरू में आपको तय 500 आयतें इन 6000 प्लस आयतों से निकाल दी, कहते हैं ये तो मनसूख हो चुकी हैं। जहां कुरान की कोई आयत उनके अपने अकायद और नजरियात और च्वाइस और ना च्वाइस के बीच में आए, वो बीमार लाता हुआ अनफुसुकुम वाली बात, उन्होंने कहा निकाल दो, निकल गई। अल्लाह ताला ने ये काम लिया शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह से, मुहद्दस देहलवी थे, दिल्ली के रहने वाले थे, उन्होंने उन 500 के अराउंड आयतों को 5 आयतों में बदला। वो कहते हैं सिर्फ 5 आयतें कुरान में जो मनसूख हैं, और वो सारी आएंगी तो मैं आपको एक एक की सुना दूंगी क्योंकि वो उनकी मनसूख भी मौजूद है नासिख भी मौजूद है। 2-3 किस्म से होता है, आयत मौजूद है आज अमल नहीं है, जैसे औरत की 1 साल की इद्दत होती थी पहले, आज भी वो आयत मौजूद है आपकी सूरह बकरा में ही आएगी, आयत मौजूद है तिलावत होती है लेकिन अमल नहीं है। इसी तरह कुछ हुक्म मौजूद है लेकिन आयत गायब है, आयत रजम सूरत अल अहज़ाब में आयत मौजूद थी पहले, हजरत उमर कहते हैं अगर मुझे डर ना हो कि लोग कहते हैं कि उमर ने अल्लाह के कुरान को बदल दिया तो मैं कुरान के शुरू के पहले सफ़े पे लिखा दूं वो आयत, हुक्म आज भी है। शादीशुदा मर्द और औरत जब जिना करें तो उनको रजम कर दो, हुक्म मौजूद है, आयत पूरे कुरान में नहीं है। ठीक है, मैं मुश्किल लफ्जों में नहीं डाली कि बिदूनी तिलावा और बेहुक में, सीधी सी बात है कुछ आयतें मौजूद हैं अमल कोई नहीं है उस पर। अब मुझे पता ही नहीं है वो आयत मनसूख है, मैं उसकी तफसील में आपको घंटा दूं, औरत को कम अज कम 1 साल तक मरने के बाद मियाँ की इद्दत करनी चाहिए, आप कहते हैं नहीं 4 महीने 10 दिन है, हाँ है तो 4 महीने लेकिन एहतियातन साल कर ले, ये होती हैं तफसीरें गलत। वल्लाहि आज मैं कहती हूँ कान खोल के सुनने वाली बात है, जो लोग आज मीडिया पे आपको जाके तफसीरें पेश कर रहे हैं, अल्लाह हम सबको हिदायत दे दे। तो लिहाजा ये एक बहुत इल्मी मौजू है, हमारे असलाफ का ये नज़रिया था कि जिसको नासिख और मनसूख का नहीं पता उसको तफसीर कराने का हक नहीं है। देखिए ना आयत मनसूख है तो मैंने उस पर ही घंटा लगा दिया, तो मैंने आपका भी वक्त ज़ाया किया और अपना भी वक्त ज़ाया किया।